चौदह चैप्टर व्याख्या के दृष्टिकोण डैश आदर्शवादी। इतिहास क्या है, उसे अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस अर्थ में इतिहास का अध्ययन विषय अत्याधुनिक तथा पूर्णतः पाश्चात्य प्रपंच है। 17वीं सदी में आधुनिक विज्ञान के जन्म से साक्ष्य तथा प्रत्यक्ष अनुभव मात्र को ज्ञान का प्रमाणिक आधार माना गया। विज्ञान के स्वरूप का प्रभाव इतिहास लेखन पर भी पड़ना अवश्यंभावी था, परंतु तभी यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि इतिहास विज्ञान नहीं है। ऐतिहासिक ज्ञान प्रकृति ज्ञान से भिन्न है। प्रकृति ईश्वर की रचना है और इतिहास का रचयिता मनुष्य है। बाल्टेयर ने इतिहास में राजनीतिक तत्वों की अपेक्षा सांस्कृतिक तत्वों को अधिक महत्व दिया और यह आग्रह किया कि युग विशेष की एक आत्मा होती है। 19वीं सदी में इतिहास का संबंध दर्शन से स्थापित हुआ। जर्मनी में हेगल ने इतिहास दर्शन का विकास किया। हेगल की सर्वाधिक ख्याति आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में है। आदर्शवाद इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है वह चरम यथार्थ नहीं है। प्रस्तुत अध्याय में हेगल की इतिहास व्याख्या के विस्तार से उसके आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इतिहास और दर्शन के समन्वय से हेगल यह प्रस्थापित करता है कि संपूर्ण इतिहास विवेकपूर्ण है। वह इतिहास को विचाराश्रित विकास मानता है और विकास का क्रम द्वंद्वात्मक होता है। इसीलिए हेगल के इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाता है। विचारों में जो आत्मबोध द्वारा प्रगति का क्रम है, वैसा ही क्रम इतिहास में होता है। इतिहास की घटनाओं में एक युक्तिसंगत अर्थ देखने के जितने प्रयास हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रयास हेगल का है। हेगल इतिहास प्रवाह में परिवर्तन मात्र न देखकर एक क्रमिक विकास देखते हैं। जो लोग अब हेगल से एकमत नहीं हैं, वे भी इससे प्रायः असहमत नहीं हैं कि इतिहास की घटनाओं में बढ़ने की विकसित होने की प्रक्रिया सारभूत होती है। हेगल के अनुसार यह विकास एक क्रम से होता है और वह क्रम द्वंद्वात्मक है। विकास क्रम की द्वंद्वात्मकता उसके युक्ति संगत होने का ही परिणाम है, क्योंकि ज्ञान का विकास सहज रूप से एक द्वंद्वात्मक क्रम का अनुसरण करता है। ज्ञान में अपने सत्य के प्रति एक जागरूकता निरंतर बनी रहती है और वह पहले पक्ष को स्वीकारता है, फिर उसे परखने के लिए उसके विपक्ष की ओर मुड़ता है और अंततः पक्ष और विपक्ष दोनों की एकांगिता को समझ उनके समन्वय की उद्भावना करता है। विशुद्ध विचार के क्षेत्र में सहज रूप से उपलब्ध होने वाली यह द्वंद्वात्मकता मानवीय इतिहास के स्थूल स्तर पर भी एक अंतर्नियामक के रूप में उपलब्ध होती है। राजनीतिक संघर्षों के पीछे राजनीतिक निष्ठाएं होती है और उनके अनुयायियों का संघर्ष मानव निष्ठाओं के सूक्ष्म संघर्ष का स्थूल प्रतिबिंब होता है। हेगेल की दृष्टि से इतिहास की प्रक्रिया एक तर्कसंगत द्वंद्वात्मकता के क्रम का अनुसरण करते हुए विकास की प्रक्रिया है। हेगेल का सबसे अधिक जोर इतिहास की युक्तिसंगत सतर्कता पर है। इतिहास का अधिष्ठान मानस है, जिसका सारांश बुद्धि है। बुद्धि मानस आत्मज्ञान की ओर उद्दिष्ट होता है, क्योंकि वही ज्ञान का सर्वोच्च प्रत्यय है। यही आत्मज्ञान की ओर यात्रा जब देश काल में संपन्न होती है तो इतिहास का रूप धारण कर लेती है। संपूर्ण इतिहास को एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा कहा जा सकता है, आत्मा से आत्मा तक। हेगेल अपने इतिहास विचार को इतिहास दर्शन कहता है। इतिहास दर्शन इतिहास के विवेकी पूर्ण विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। विवेक मनुष्य का विशिष्ट स्वभाव है। उसके संवेदन और भाव, ज्ञान और संकल्प सभी अपनी विशिष्ट मानवीयता में विवेक युक्त होते हैं। तथापि इतिहास को विवेक से जोड़ना आपाततः असंतोषजनक प्रतीत होता है, क्योंकि इतिहास में तथ्यों की प्रधानता होती है और विचार उनके अधीन। दर्शन में इसका उल्टा है, क्योंकि वहाँ विचार अपने अस्तित्व निरपेक्ष स्वराज में विचरण करते हैं। अतः इतिहास के दर्शन में सदा इसका भय रहेगा कि कहीं वह इतिहास के तथ्यों की प्राकल्पनाओं के अनुसार तोड़ मरोड़ न करे। किंतु यह भय वस्तुतः निराधार है, क्योंकि दर्शन इतिहास के पास एक ही पूर्व कल्पना दर्शन में इसका उल्टा है, क्योंकि वहाँ विचार अपने अस्तित्व निरपेक्ष स्वराज में विचरण करता है। अतः इतिहास के दर्शन में सदा इसका भय रहेगा कि कहीं वह इतिहास के तथ्यों की प्राकल्पनाओं के अनुसार तोड़ मरोड़ न करे। किंतु यह भय वस्तुतः निराधार है, क्योंकि दर्शन इतिहास के पास एक ही पूर्व कल्पना लेकर आता है, और वह है बुद्धि या विवेक की। वह यह मानकर चलता है कि बुद्धि विश्व का शासन करती है, अतः विश्व का इतिहास एक बुद्धि संगत प्रक्रिया है। दर्शन में यह विश्वास कि बुद्धि ही परम तत्व है और विश्व उसकी अभिव्यक्ति एक तर्क प्रतिपाद्य धारणा है। ऐतिहासिक ज्ञान के संदर्भ में यह दार्शनिक प्रतिपत्ति एक प्रकार की परिकल्पना बन जाती है, जिसके सहारे इतिहास के तथ्य परखे जाते हैं। जो इतिहासकार अपने को कल्पनोपेक्षी और निष्पक्ष कहते हैं और यह मानते हैं कि वे तथ्य मात्र का यथावत प्रतिबिंबन करते हैं, वे भी अपनी बुद्धि का सक्रिय प्रयोग करते ही हैं। वे भी अपने समक्ष प्रस्तुत प्रतिभासों को समझने के लिए अपनी बुद्धि विकल्पों को प्रयुक्त करते हैं। सभी विद्याओं के अपने पदार्थ, अपनी मूल कल्पनाएं होती है, और यह असंभव है कि बौद्धिक दृष्टि के बिना किसी विद्या का विकास हो सके। बौद्धिक दृष्टि से विश्व को देखने से विश्व भी बुद्धि संगत दिखता है। विश्व को बुद्धि शासित मानने की दो पुरानी धारणाएं उदाहरण के लिए प्रस्तुत की जा सकती है। यह प्रसिद्ध है कि अनकासागोरस ने कहा था कि बुद्धि विश्व का शासन करती है। यहाँ बुद्धि का अर्थ चैतन्य नहीं है, अपितु बौद्धिक ज्ञान की उपयुक्त विषयता है। सौर परिवार में ग्रह नित्य नियमों के अनुसार चलते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था या धर्मता को अव्यक्त बुद्धि कहा जा सकता है, क्योंकि उसके स्वरूप को बुद्धि विषय के रूप में ही सोचा जा सकता है। सुकरात का कहना था कि उन्होंने अनकासागोरस के मत को इस आशा से उत्साहपूर्वक स्वीकार किया कि वह उन्हें समस्त प्रकृति को समझाने के लिए भौतिक तत्वों जैसे बाहरी कारणों का ही उल्लेख किया। वस्तुतः अनकासागोरस ने प्रकृति की बुद्धि संगतता को सामान्यतः ही समझा था। उनका ज्ञान प्रकृति को बुद्धि के साथ विस्तार से नहीं जोड़ सकता था। मध्यकाल में इतिहास की ईश्वराधीनता के रूप में उस पर बुद्धि के शासन का स्वीकार था, किंतु इस मत में भी वही दोष है जो पिछले में है। ईश्वर इच्छा अतर्क और अज्ञात रहती है, और उसका विशिष्ट घटनावली से कोई बुद्धिगम्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। बल्कि जहाँ अनकासागोरस अपने समान तत्व में उसकी अति सामान्यता के कारण ऐतिहासिक विशेषों का अंतर्भाव नहीं कर पाया, ईश्वर इच्छावाद में ऐसा कर सकना ही असंभव है, क्योंकि ईश्वर इच्छा को मानवीय बुद्धि के परे माना जाता था। किंतु यदि हम इतिहास को बुद्धि तत्व पर अथवा ईश्वरीय बुद्धि पर आश्रित मानते हैं, तो हमारी बुद्धि का यह कर्तव्य हो जाता है कि मानवीय इतिहास में बुद्धि की प्रेरणा और चमत्कार देखें। इस दृष्टि से इतिहास दर्शन ईश्वरीय न्याय का दर्शन हो जाता है। इसके लिए एक ओर यह जानना आवश्यक है कि विश्व का परम साध्य क्या है, दूसरी ओर यह कि इतिहास में यह साध्य कहाँ तक सिद्ध हुआ और अनर्थ को परास्त कर सका है।